योएल की पुस्तक और लाओदिकिया की सप्तम दिवसी एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 6 अद्भुत गिनने वाला और कब तक
पाल मोनी अद्भुत गणक केवल गणित पर आधारित पहेलियां ही नहीं गढ़ता, वो गणित का रचयिता है,
क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग में और पृथ्वी पर दृश्य और अदृश्य सब वस्तुएं सृषि जी गईं, चाहे वे सिंहासन हों या प्रभुत्व या प्रधानताएं या अधिकार, सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृषि गईं, और वो सब वस्तुओं से पहले है और उसी में सब वस्तुएं स्थिर रहती हैं। कुलुसियों 1:16-17।
यदि आप AI से उन संख्याओं के बारे में पूछें जो पाल मोनी ने अपने भविष्यवाणी वचन में रखी हैं, और ये भी पूछें कि क्या उन संख्याओं का गणित की दुनिया में कोई महत्व है, तो पता चलता है कि लगभग हर भविष्यवाणी संबंधी संख्या का गणित में एक विशेष महत्व है। निम्न सूची 15 भविष्यवाणी संबंधी संख्याएं प्रस्तुत करती हैं, जो गणित की दुनिया, संख्या सिद्धांत, पाठ्य पुस्तकों और प्रतिनिय संस्कृति में उनकी प्रमुखता के अनुसार क्रमबद्ध है।
42 perm in decilis, perp संस्कृति प्रतीच plus perchure pronic catalan sphenic.
से अनेक उपाधियों वाली बहुत प्रिय छोटी अभाज्य संख्या मर्सेन, सेफ प्राइम, हैप्पी प्राइम आदि। 3-3 विशेष लेबलों से लदी अभाज्य संख्या सोफी जर्मेन, सेफ प्राइम, हैप्पी प्राइम आदि।
2520, 1 से 10 तक सभी कहेंशाओं से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 1 से 10 का ल से पू तथा अत्यधिक संयोजित संख्या के रूप में प्रसिद्ध।
220 सबसे छोटी मित्र संख्याओं की जोड़ी का एक सदस्य 200 × 7।
नंबर 9 उल्लेखनीय अभाज्य जुड़वा कजिन सेक्सी हिग्नर संख्या हैप्पी अभाज्य और भी छोटी अभाज्य संख्याओं में अत्यंत विख्यात।
1260 महत्वपूर्ण अत्यधिक संयोजित संख्या 25-26 शेट ठीक पहले
सर्ती में प्रथम 3 अभाज्यों के गुणनफल के रूप में सबसे छोटी अत्यधिक भाजकों वाली संख्या पाठ्यपुस्तकों का क्लासिक उदाहरण
3309 से 9 तक का लघुत्तम समापवर्त्य
400 साफ सूत्रपूर्ण वर्ग दिशिस्क्वारे
65 दो विभिन्न तरीकों से 2 धनात्मक वर्गों के योग के रूप में तमानी व्यक्त की जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या 1² + 8² + 8² + 7² मेरे अच्छा है पर थोड़ा अधिक विशिष्ट
5² अधिक के संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त न होने वाली सबसे बड़ी सम संख्या प्लस कई विशिष्ट रुचि वाले शीर्षक
430 संडे स्फेनिक संख्या 2/5/43
3024 साधारण सम योजित
1/3 गौण प्रविष्टियां अर्ध अभाज्य स्वसंख्या
यदि आप मेरी तरह हैं और गणित की दुनिया से परिचित नहीं हैं, तो आप सूची पढ़कर ये मान सकते हैं कि गणित में हर संख्या की कोई खास विरासत अजीब सी बारीकियां वगैरह होती है लेकिन ऐसा नहीं है जब मैंने इन भविष्य सूचक संख्याओं में से प्रत्येक के बारे में गणित जगत की समझ जानने के लिए AI से पूछा तो मैंने एक एक करके पूछा और 4th संख्या के बाद एक अनुवर्ती प्रश्न किया मैं ये जानना चाहता था कि क्या AI मेरी पूछी गई किसी भी संख्या के बारे में कोई विरासत सरीखा ऐतिहासिक विवरण ही सुना देगा या फिर पहली 4 वास्तव में गणित जगत में उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली 4 संख्याएं गणित में अत्यंत विख्यात निकली पर बात यही नहीं रुकी AI ने उत्तर दिया कि वे पहली 4 संख्याएं सचमुच गणित जगत में एक विशिष्ट श्रेणी में आती हैं जैसे जैसे मैं जानकारी इकट्ठा करता गया AI ने ये कहते हुए मेरी तारीफ शुरू कर दी कि मैं गणित जगत में ऐसी अलग दिखने वाली संख्याएं चुनने में कितना अच्छा हूं मेरे द्वारा पूछी गई अंतिम 2 संख्याओं 19 से 65 के उत्तर में AI का आखिरी कथन ये था 19 सुपरस्टार अभाज्यों में शीर्ष के करीब बखूबी फिट बैठती है जबकि 65 सम्मानजनक है पर नीचे आता है फिर भी बढ़िया चयन उल्लेखनीय संख्याएं लगातार ढूंढने की आपकी क्षमता वाकई प्रभावशाली है कोई और है
मुझे पूरा विश्वास है हालांकि मैं ये नहीं जानता कि अपने विश्वास को कैसे सिद्ध करूं ऐसा कोई और ऐतिहासिक साक्षी किसी भी प्रकार का नहीं है जिसे ये दिखाया जा सके कि उसने एक ही स्रोत से इतनी अधिक विशेष गणितीय संख्याओं की पहचान की हो गणित की दुनिया में ये संख्याएं विशेष हैं
और यीशु आध्यात्मिक जगत को समझाने के लिए प्राकृतिक जगत का उपयोग करते हैं। किसी एआई स्रोत से पूछिए कि गणित की दुनिया में ये संख्याएं क्या दर्शाती हैं और उसका उत्तर आपका दिमाग हिला देगा। इन गणितीय सिद्धांतों आदि को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना मेरी क्षमता से परे है, लेकिन गणितीय सिद्धांत के प्रति मेरी सीमित योग्यता के बावजूद मुझे इन संख्याओं में से कुछ उनकी भविष्यवाणी संबंधी विशेषताओं के कुछ तत्वों की गवाही देती प्रतीत हुई। संख्या 3422 सबसे छोटी संख्या है और संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, जिसे 1 से 10 तक की हर संख्या से बिना किसी शेष फल के पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। इसी कारण गणित में इसे 1 से 10 का लघुत्तम समापवर्त्य LCM कहा जाता है। इस वजह से इसके बहुत से भाजक हैं, कुल 48, और ये किसी भी छोटी संख्या के भाजकों की संख्या से अधिक है। ये इसे एक हाईली कंपोजिट संख्या बनाता है। गणित में ऐसी संख्याओं का एक विशेष वर्ग जिनके भाजक असामान्य रूप से अधिक होते हैं। संख्या 1730 में 2582 की ख्याति के समान एक उल्लेखनीय गणितीय गुण है। यह 1 से 9 तक के प्रत्येक पूर्णांक से विभाज्य सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात 1 से 9 तक का लघुलतम समापवर्त्य। संख्या 130 का संख्या सिद्धांत में एक प्रसिद्ध विशेष वर्गीकरण है। ये मित्र संख्याओं की सबसे छोटी और सबसे प्रसिद्ध जोड़ी का एक भाग है। गणित की दुनिया में मित्र संख्याएं दो भिन्न संख्याओं की वो जोड़ी होती है जिनमें प्रत्येक के उचित भाजकों स्वयं को छोड़कर सभी भाजकों का योग दूसरी संख्या के बराबर होता है। गणित में इन्हें परिपूर्ण मित्र माना जाता है। यहां तक कि प्राचीन यूनानियों ने भी इन्हें मित्रता के प्रतीक के रूप में देखा। ये जोड़ी 130 और आचौक दिगश है। ये जोड़ी 330 और आचौक दिगश सबसे छोटी ज्ञात मित्र जोड़ी है जिसकी खोज प्राचीन काल में संभवतः पाइथागोरस या उनके अनुयायियों द्वारा की गई थी और सदियों तक यही एकमात्र ज्ञात जोड़ी रही। इन दोनों में से एक के रूप में 330 को संख्या सिद्धांत के शास्त्रीय उदाहरणों में गिना जाता है। आध्यात्मिक रूप से संख्या 220 देवत्व और मानवता के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है और गणित की दुनिया में ये परिपूर्ण मित्रों की एक जोड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। 220-203 हुगुनुनत लियो बाय एक अच्छे मुंगुनुनत लियो बाय सारास्टिक अवागाम्बत सीजुनी ने इस अर्थ में जुड़ी हुई है कि जिन बातों के लिए ये तीनों संख्याएं प्रसिद्ध हैं वे इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी अपनी श्रेणी में सबसे छोटी है। पालमोनी दानियेल 8 के पद 13 और 14 में 220-203 और 203 नोनों का उल्लेख करता है और जब 220-203 और में से 203 घटाया जाता है तो 220 शेष रहता है। अतः गणित की दुनिया की ये तीनों प्रसिद्ध छोटी संख्याएं उन पदों में प्रस्तुत हैं जो शास्त्रों में उस एकमात्र अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं जब मसीह ने स्वयं को पालमोनी के रूप में प्रकट किया। 2300 दिन तक तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। उस न्याय की शुरुआत को चिन्हित करता है जो 1844 में मृतकों से आरंभ हुआ और फिर 9 गलब पर जीवतों पर स्थानांतरित हो गया। पद 13 और 14 में पालमोनी अद्भुत गणक मूसा के 7 समय को दानियल के 2300 दिन के साथ जोड़ता है।
तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते हुए सुना और दूसरे पवित्र जन ने उस बोलने वाले पवित्र जन से कहा, नित्य बलिदान और उजाड़ करने वाले अपराध के विषय का ये दर्शन कब तक रहेगा कि पवित्र स्थान और सेना दोनों को 5 तले रौंदा जाए? और उसने मुझसे कहा, 2300 दिनों तक, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। दानियल 8:13 खडूर।
पवित्र स्थान और सेना एक भविष्य सूचक संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। पवित्र स्थान का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच निवास करे
और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उनके बीच में वास करूं। निर्गमन 25:8।
पवित्र स्थान और सेना को पैरों तले रौंदा जाना था और उस संत ने पलमोनी से, जिसे वह सिवेश संत के रूप में दर्शाया गया है, पूछा कि कब तक पवित्र स्थान और सेना दोनों को नित्य और उजाड़ की अधर्मता कहलाने वाली शक्तियों द्वारा पैरों तले रौंदा जाता रहेगा। दो उजाड़ करने वाली शक्तियां जो पवित्र स्थान और सेना को रौंदेंगी,
मूर्ति पूजा और पोप तंत्र दोनों ही परमेश्वर के पवित्र स्थान और परमेश्वर की प्रजा को रौंदेंगे।
लेव्य व्यवस्था 26 में मूसा के सात काल को उसकी वाचा का झगड़ा कहा गया है। इसराइल के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध सात काल का दंड ही उसकी वाचा का झगड़ा था। उस दंड के अनुसार उत्तरी राज्य को 732 ईसा पूर्व में और दक्षिणी राज्य को 757 ईसा पूर्व में बंधुआई में ले जाया जाएगा। पलमोनी से पूछा गया कि कब तक सात काल का तितर बितर पवित्र स्थान और सेना पर किया जाएगा और उत्तर है 22 अक्टूबर 1844 तक।
इसराइल के उत्तरी राज्य के विरुद्ध 757 में समाप्त हुआ और दक्षिणी राज्य के विरुद्ध 22 अक्टूबर 1844 को समाप्त हुआ। दक्षिणी राज्य के विरुद्ध 7 दानियल के 2300 दिन के साथ 22 अक्टूबर 1844 को समाप्त हुआ। पालमोनी ने जानबूझकर तीन भविष्यवाणियों को आपस में जोड़ा और ऐसा करते हुए वो 57 से 1844 तक को वे 46 वर्ष ठहराता है जिनमें उसने मिलराइट मंदिर स्थापित किया। पद 13 और 14 की सही समझ भविष्यवाणी के विद्यार्थी को न केवल 7 और 2300 दिन को पहचानने देती है बल्कि 22 और 3300 के संबंध पर विचार करने पर संख्या 3022 और दोनों 22 भविष्यवाणियों के संबंध पर विचार करने पर संख्या 46 भी उत्पन्न करती है।
मूसा और दानियेल की समय संबंधी भविष्यवाणियां 22 अक्टूबर 1844 को एक साथ समाप्त हुईं। उसी समय पालमोनी ने 200 सती पीस का प्रतीक प्रकट किया। दानियेल की जो ईसा पूर्व 34 में आरंभ हुई और मूसा की जो ईसा पूर्व 1707 में आरंभ हुई, इन दोनों भविष्यवाणियों के आरंभ भविष्य वर्षों का, क्योंकि ये दोनों भविष्यवाणियां ठीक उसी समय साथ साथ समाप्त होने वाली थीं जब 1844 में 10-22 को हब्बकूक 2 चानस पूरा हुआ। वो तारीख सातवीं तुरही के बजने की शुरुआत को दर्शाती है जब परमेश्वर का रहस्य पूरा होना था, और इसी प्रकार 144,000 की मुहरबंदी के काल का आरंभ भी चिह्नित करती है। वही तारीख 144,000 की मुहरबंदी की शुरुआत को चिह्नित करती है क्योंकि सातवीं तुरही के बचते समय जो कार्य पूरा होता है वो परमेश्वर की प्रजा पर मुहर लगना है। यही परमेश्वर का रहस्य है, मसीह है तुम में महिमा की आशा, जो दिव्यता और मनुष्यता का संयोग है।
उत्तरी राज्य के सात काल का अंत 1798 में और दक्षिणी राज्य के सात काल का अंत 1844 में होने से 1798 से 1844 तक का 46 वर्षीय काल बनता है। ये अवधि प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के पहले स्वर्गदूत के आगमन से शुरू होती है और 1844 में तीसरे स्वर्गदूत के आने पर समाप्त होती है। भविष्यवाणी दृष्टि से ये इस तथ्य के दो गवाहों की पहचान करता है कि 1798 से 1844 तक की अवधि एक प्रतीकात्मक अवधि है। इसराइल के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों पर सात काल क्रमशः 1798 और 1844 में समाप्त हुए और ऐसा होने से उन्होंने 46 वर्ष की एक अवधि उत्पन्न की। वो अवधि दूसरे गवाह के बिना निरर्थक है। सिस्टर व्हाइट स्पष्ट रूप से सिखाती हैं कि पहले और दूसरे के बिना तीसरा स्वर्गदूत हो ही नहीं सकता। वो ये भी स्पष्ट रूप से बताती हैं कि पहला स्वर्गदूत 1798 में आया और तीसरा 22 अक्टूबर 1844 को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के तीन स्वर्गदूत ये दूसरा गवाह प्रदान करते हैं कि 1898 से 1844 तक की अवधि एक प्रतीकात्मक भविष्यवाणीय अवधि है।
संख्या 60 साथ मंदिर का एक प्रतीक है, और जब मसीह ने पहली बार मंदिर को शुद्ध किया तो हम पाते हैं कि मसीह से वाद विवाद करते हुए यहूदियों ने ये बताया कि जब हेरोदस ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया तो उसमें 46 वर्ष लगे। इतिहासकार बताते हैं कि जिसका उल्लेख यहूदियों ने किया था, हेरोदस का वो पुनर्निर्माण का उसी वर्ष समाप्त हुआ जब यीशु का बपतिस्मा हुआ। ये तथ्य और साथ ही ये आध्यात्मिक सत्य कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं और उनका स्वरूप ही मंदिर है जिसका प्रतीक 46 है।
और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा वो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। यूहन्ना 1:14।
ड्वेल्ट के रूप में अनुदित शब्द का अर्थ तंबू है। पवित्र स्थान का उद्देश्य ये था कि परमेश्वर सेना अपनी प्रजा के बीच वास करे। इब्रानी शब्द तंबू, जिसका अनुवाद ड्वेल्ट के रूप में किया गया है, वही शब्द है जो मूसा द्वारा खड़ा किए गए तंबू के लिए प्रयुक्त हुआ है। और जब मसीह ने पहली बार मंदिर को शुद्ध किया, तो ये सीधे कहा गया कि मसीह का शरीर ही मंदिर था। संख्या 46, जो ये ठीक से समझने पर स्थापित होती है कि पालमोनी एडवेंटवाद की नींव बनने वाली दो आयतों में क्या प्रस्तुत कर रहा है, यूहन्ना में मिलती है। ये 46 वर्ष 220 से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो देखने को तैयार है।
और उसके चेलों को स्मरण किया कि लिखा है, तेरे घर के लिए जो उत्साह है उसने मुझे खा लिया है। तब यहूदियों ने उत्तर देकर उससे कहा, जब तू ये कार्य करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, इस मंदिर को ढा दो और तीन दिनों में मैं इसे फिर से उठा दूंगा। तब यहूदियों ने कहा, ये मंदिर 46 वर्ष में बनाया गया है और क्या तुम इसे तीन दिनों में खड़ा कर दोगे? परंतु वो अपने देह के मंदिर के विषय में कहता था। यूहन्ना 2:17-21।
ये 20वीं आयत में है और इसलिए यूहन्ना 2:20 में यहूदी कहते हैं, ये मंदिर बनते बनते 46 वर्ष लगा, क्या तू इसे तीन दिनों में फिर खड़ा कर देगा? संख्या 46 मंदिर से जुड़ी है, ऐसे अध्याय और आयत में जो 220 की ओर स्पष्ट संकेत करता है। उस खंड में यहूदी बताते हैं कि मंदिर 46 वर्षों में बनाया गया था, जो प्राचीन इसराइल की शुरुआत के समानांतर है, जब मूसा मंदिर के निर्माण के निर्देश प्राप्त करते हुए 46 दिन पहाड़ पर रहा। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए ये संयोग नहीं कि मानव मंदिर में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 पुरुष के और 23 स्त्री के। ये 23-23 पुरुष और स्त्री गुणसूत्र मानव मंदिर के निर्माण के निर्देश है। पालमो, जिसने सब चीजें बनाई, उसने मानव शरीर के भीतर वो प्रणाली भी बनाई जो शरीर की हर कोशिका को नई और ताज़ा कोशिकाओं से बदल देती है और पुराने शरीर की कोशिकाओं का संपूर्ण नवीनीकरण 7 वर्षों में होता है, जो 220-20 दिन है। यहूदियों ने 46 वर्षों को मंदिर से जोड़ा, परंतु मसीह ने अपने शरीर की बात की जो तीन दिनों में उठाया जाना था। 1798 से 1894 तक मिलराइट मंदिर उठाया गया और वो उसी अवधि में उठाया गया जब तीनों स्वर्गदूत आते हैं, और 1798 से 1894 तक के 46 वर्षों में फैले उन तीन स्वर्गदूतों को मसीह ने दिनों के रूप में प्रस्तुत किया। उसने कहा, इस मंदिर को नष्ट करो और मैं इसे तीन दिनों में उठा दूंगा। इस प्रकार उस मंदिर के ढहाए जाने को उस मंदिर के तीन दिनों में उठाए जाने के साथ जोड़ दिया। दानियेल 13:10 गिर में यह स्पष्ट करता है कि नष्ट किए जाने वाले पवित्र स्थान और प्रजा है। उत्तरी राज्य प्रजा का और दक्षिणी राज्य पवित्र स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यरूशलेम वही है। अतः जब रौंदे जाने का प्रश्न उठाया जाता है, तो इन दोनों में से जिसे पहले बंदी बनाकर ले जाया गया वो 733 ईस्पू में उत्तरी राज्य था। 46 वर्ष बाद 757 ईस्पू में यहूदा के दक्षिणी राज्य के लिए 7 काल आरंभ होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रजा का रौंदा जाना 1798 में समाप्त हुआ और पवित्र स्थान का रौंदा जाना 1844 में समाप्त हुआ। प्राचीन इसराइल 3 फरमानों के आधार पर बाबुल से निकलकर यरूशलेम का पुनर्निर्पण करने आया, जिनमें से तीसरे ने 2300 वर्षों की वो अवधि आरंभ की जो 22 अक्टूबर 1844 को तीसरे स्वर्गदूत के आगमन के साथ समाप्त हुई। 1898 में आध्यात्मिक बाबुल के शासन की वो अवधि जिसका प्रतिरूप ऐतिहासिक बाबुल के 70 वर्षों के राज्य से लिया गया था समाप्त हो गई, और 3 स्वर्गदूतों द्वारा निरूपित भविष्य सूचक अवधि ठीक उसी स्थान पर पूरी हुई जहां भविष्यवाणी तीसरे फरमान की घोषणा के साथ शुरू हुई थी। 3 फरमानों की वो अवधि जो 3,300 वर्षों का अल्फा है, 3 स्वर्गदूतों की उस अवधि में दोहराई गई जो 3,300 दिनों का ओमेगा थी।
अल्फा और ओमेगा दोनों एडवेंटवाद के आधारभूत स्तंभ है। 457 और 1844 मंदिर और यरूशलेम के निर्माण के कार्य का चित्रण करते हैं।
और उससे कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख वो पुरुष जिसका नाम अंकुर है, वो अपने स्थान से अंकुरित होगा और वो यहोवा का मंदिर बनाएगा। वही यहोवा का मंदिर बनाएगा और वो महिमा धारण करेगा और अपने सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा, और वो अपने सिंहासन पर याजक भी होगा, और दोनों के बीच मेल की युक्ति रहेगी। जकर्याह 6:12-13।
अंकुर के रूप में मसीही की यह पहचान उसके रूप में की गई है जिसने प्रभु का मंदिर बनाया, और जैसे वो तीसरे दिन उठाया गया था वैसे ही 22 अक्टूबर 1845 को तीसरे स्वर्गदूत के आगमन पर मिलराइट मंदिर मसीही द्वारा खड़ा किया गया था, क्योंकि प्रभु का मंदिर वही बनाता है। यद्यपि ये मिलराइट इतिहास में पूरा हुआ, पर इसकी सिद्ध परिपूर्ति अंतिम वर्षा के काल में है, क्योंकि वो प्रभु का मंदिर बनाएगा। इस वाक्यांश के दोहराव से ये प्रकट होता है कि प्रभु ने 46 वर्षों में मिलराइट मंदिर खड़ा किया, पर वो अंतिम वर्षा के समय एक अन्य मंदिर 1,44,000 का बनाता है, क्योंकि पतरस कहता है कि इन लक्ष्य के साथ मसेस्टना ताला ये सिक्सटाला ओरा इंखर्ची और बड़ूप के रूप में खड़ा करम फिर तय किया जाना है। जब कब तक का प्रश्न पालमोनी से पूछा जाता है तो 2300 दिन तक, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। पर मूसा, एलिया और मिलराइट्स, पापसी के शहीद जकरिया और यूहन्ना जो मंदिर का माप लेते हैं, यशाया अध्याय 6 में और अन्य जिनका उल्लेख नहीं किया गया, कहते हैं कि पद 13 के कब तक के प्रश्न का उत्तर ये है, 9 के आवर्त से संडे लौ तक, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। 23 अक्टूबर 1864 फेरवर के पूर्व चित्रण अब्राहम द्वारा अपने पुत्र को अर्पित करने से हुआ, क्योंकि वो उस क्रूस का पूर्व चित्रण था जहां स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को अर्पित किया। प्रेरित पौलुस के अनुसार लाल सागर पर मूसा और इब्रानियों की घटना बपतिस्मा का प्रतिनिधित्व करती थी, जो क्रूस का पूर्व चित्रण करता है, जिसका पूर्व चित्रण अब्राहम ने मौरिया पर्वत पर इसहाक के साथ किया था।
अतएव भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब समुद्र से होकर पार गए, और सब ने बादल और समुद्र में मूसा में बपतिस्मा लिया। 1 कुरिन्थियों 10:1-2।
ये स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ है कि बपतिस्मा का प्रतिनिधित्व 22 अक्टूबर 1844 द्वारा किया जाता है, जो वो दिन है जब नूह के 8 सदस्यों वाले परिवार का बपतिस्मा हुआ था। 8 पुनरुत्थान का प्रतीक है।
जो पहले आज्ञा न मानते थे, जब एक बार नूह के दिनों में परमेश्वर का दीर्घ धैर्य प्रतीक्षा करता रहा, जब जहाज तैयार किया जा रहा था जिसमें थोड़े अर्थात 8 व्यक्ति पानी के द्वारा बचाए गए, उसी का प्रतिरूप बपतिस्मा भी अब हमें बचाता है। ये शरीर की मैल दूर करना नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर एक भले विवेक का उत्तर है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। 1 पतरस 3:20-21।
22 अक्टूबर 1844 के बारे में जो सत्य प्रकट किया गया है, उसके किसी भी तत्व को गलत समझना वैसा ही है जैसे नूह की नौका में दी गई गवाही, लाल समुद्र पर मूसा की गवाही, मोरिया पर्वत पर अब्राहम की गवाही और क्रूस पर यीशु की गवाही को गलत समझना। उसी तिथि को तीसरा स्वर्गदूत इतिहास में प्रवेश किया, और वही वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के लोगों को मुहर बंद करता है।
तब मैंने तीसरा स्वर्गदूत देखा। मेरे साथ रहने वाले स्वर्गदूत ने कहा, भयप्रद है उसका वचन, भयानक है उसका कार्य। वो वही स्वर्गदूत है जिसे गेहूं को जंगली घास से छांटकर अलग करना है और स्वर्गीय खलिहान के लिए गेहूं पर मुहर करना या उसे पान देना है। इन बातों में पूरा मन पूरा ध्यान लगना चाहिए। फिर मुझे ये दिखाया गया कि जो ये विश्वास करते हैं कि हम दया का अंतिम संदेश पा रहे हैं, उनके लिए उन लोगों से अलग रहना आवश्यक है जो प्रतिदिन नए नए भ्रम ग्रहण कर रहे हैं या उन्हें आत्मसात कर रहे हैं। मैंने देखा कि न युवा और न वृद्ध किसी को भी भ्रम और अंधकार में पड़े लोगों की सभाओं में जाना नहीं चाहिए। स्वर्गदूत ने कहा, मन निष्फल बातों पर ठहना छोड़ दे। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेज खंड 5 495।
तो उस तिथि का प्रतीकात्मक निरूपण करने वाली पवित्र भविष्य सूचक समय रेखाओं के साथ साथ तीसरा स्वर्गदूत आया और उसने अपना कार्य आरंभ किया, जिसमें उस खंड में गेहूं और खरपतवार के रूप में दर्शाई गई बुद्धिमान और मूर्ख कुवारियों को अलग करना शामिल है। ये न समझना कि 1844 का पवित्र रूप से कितनी संपूर्णता के साथ प्रतिरूपण किया गया है, या ये न जानना कि 1844 से जुड़े और 1863 तक जारी रहने वाले मार्ग चिन्हों के विषय में क्या प्रकट किया गया है, किसी आत्मा को इस तथ्य के निहितार्थों से भविष्यवाणी की दृष्टि से जूझने के लिए अप्रस्तुत छोड़ देता है कि मसीह उन दो पदों का केंद्रीय विषय है जो एडवेंटवाद की नींव का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहां मसीह को पालमुनि के रूप में पहचाना जाता है जो गणित और अन्य सब कुछ के सृष्टि करता है।
आयत 13 के प्रश्न का वर्तमान उत्तर 1845 में जो उत्तर था उससे भिन्न है। 1845 में अग्रदूत एक बड़ी निराशा से उबर रहे थे और इस विचार से जूझना शुरू कर रहे थे कि प्रभु ने भविष्यद्वक्ता का ऐसा वरदान फिर से बहाल कर दिया है जैसा शिष्यों के समय से अब तक नहीं हुआ था। वे तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के निहितार्थ समझने की कोशिश कर रहे थे और इस तथ्य के प्रति जाग रहे थे कि जिसका अनुभव वे अभी अभी करके गुजरे थे वो किसी भी तरह पवित्र इतिहास से कम नहीं था। 1850 तक वे 1843 के पायनियर चार्ट को सुधारने और उसके स्थान पर रखने के लिए एक नया पायनियर चार्ट प्रस्तुत कर रहे थे। दोनों चार्टों को सिस्टर व्हाइट ने हबकुक अध्याय 2 की पट्टिकाओं की पूर्ति के रूप में पहचाना था। ऐसी स्थिति में 1850 से परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन की एक स्थापित पूर्ति है। अग्रदूतों ने यह समझा और लिखा कि 1843 का चार्ट हबकुक अध्याय 2 की पट्टिकाओं की पूर्ति नहीं था। इस कथन का खंडन करना मूल विश्वास को छोड़ रहा था। बहन व्हाइट ने इस चार्ट का समर्थन किया ये कहते हुए कि वो प्रभु के हाथ द्वारा निर्देशित था और हबकुक की पूर्ति था, और उन्होंने 1850 के चार्ट के लिए भी यही समर्थन दिया। हबकुक पट्टिकाओं का बहुवचन में उल्लेख करता है, और जब 1843 का चार्ट मई 1842 में मुद्रित हुआ तो उसमें कुछ अंकों में एक त्रुटि थी जिसे प्रभु ने अपने हाथ से ढक रखा था। 1850 में एक नया चार्ट उपलब्ध कराया गया जिसमें उन अंकों की उस त्रुटि को सुधारा गया। हबकुक की पट्टिकाएं भविष्यवाणी की पूर्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वे भविष्यवाणियां मई 1842 से जनवरी 1850 तक पूरी हुई। 1843 की अर्थात आरंभिक तालिका में एक त्रुटि थी और 1850 की अंतिम तालिका में कोई त्रुटि नहीं थी। 1842 के मई से जनवरी 1850 तक की अवधि एक स्थापित भविष्य सूचक अवधि है, और मई 1842 तथा जनवरी 1842 दोनों भविष्य सूचक मार्ग चिन्ह का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन मार्ग चिन्हों पर अल्फा और ओमेगा की छाप है। अल्फा अर्थात प्रथम अक्षर और ओमेगा जो अंतिम और 22वां अक्षर है। 1842 अल्फा है और 1842 ओमेगा है, और यदि हम उन दो हिब्रू अक्षरों के साथ हिब्रू वर्णमाला का 13वां अक्षर रखें तो हम हिब्रू शब्द सत्य का निर्माण करेंगे जो हिब्रू वर्णमाला के प्रथम 13वें और 22वें अक्षरों से लिखा जाता है। 1842 और 1425 के मील के पत्थरों पर लागू की गई भविष्य सूचक तर्क प्रणाली ये है कि वे त्रुटि द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। अल्फा में एक त्रुटि थी और ओमेगा ने ठीक उसी त्रुटि को सुधारा, अतः अल्फा और ओमेगा अक्षरों के बीच जो स्थित है वो त्रुटि है, विद्रोह का प्रतीक, और यही संख्या 13 का प्रतिनिधित्व करती है। 1842 से 1450 तक का काल अल्फा और ओमेगा की छाप वाला एक स्थापित भविष्य सूचक काल है, और वही सत्य है। जब तक कोई लाउदी की आयाई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट उस इतिहास का गंभीर और आध्यात्मिक रूप से अन्वेषण नहीं करता, तब तक वे उस प्रत्यक्ष सत्य के प्रति वस्तुतः अंधे बने रहते हैं जिसे 1425 तक हबक्कक की तालिकाओं का भविष्य सूचक काल किसी भी संदेह से परे स्थापित करता है। दो साक्षियों द्वारा मिलकर स्थापित सत्य ये है कि 1425 का चार्ट त्रुटि रहित है। 1425 का चार्ट 1043 के चार्ट की तरह
मूसा के सात समय को समाहित करता है और दोनों चार्टों पर सात समय को चार्ट के केंद्र में शीर्ष से नीचे तक रखा गया है, जो 777 ईसा पूर्व से 144 तक के सात समय की अवधि को दर्शाता है। तू राष्ट्रपति मात्र चार्ट पर नहीं है, वो चार्ट का केंद्र है।
सात समय को दर्शाने वाली भविष्य सूचक रेखा के केंद्र में जो चित्रित है वो क्रूज है। दोनों तालिकाओं के केंद्र में ऊपर से नीचे तक चलने वाली 2022 की काल रेखा है। बीच में क्रूस है। क्रूस उसी सप्ताह का मध्य था जिसमें मसीह ने दानियल 9:27 की पूर्ति में बहुतों के साथ वाचा की पुष्टि की। वो सप्ताह ताला और 11 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, जो भविष्यवाणी के अनुसार 2022 दिनों के बराबर है, जैसा तालिकाओं में है। 2022 दिनों के बिल्कुल मध्य में मसीह क्रूस पर वाचा की पुष्टि कर रहे थे। मसीह के बपतिस्मा से लेकर क्रूस तक भविष्यवाणी के अनुसार 268 दिन थे। इसका अर्थ ये है कि बपतिस्मा से क्रूस तक 68 दिन प्रातःकालीन और 2022 दिन सायंकालीन बलिदान होते, परंतु क्रूस पर वो अंतिम बलिदानी मेमना याजक के हाथ से निकल गया और परमेश्वर का मेमना स्वयं सायंकालीन बलिदान बन गया। और इस प्रकार बपतिस्मा के बाद से 2022 जीनवा मपने का बलिदान ठहरा।
सप्ताह का केंद्र क्रूस था और दोनों पवित्र तालिकाओं का केंद्र भी क्रूस है, परंतु प्रत्येक स्थिति में मेमना उस सत्य के भीतर स्थापित है जिसे 2022 द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। क्रूस 2022 दिनों के मध्य में स्थापित है और क्रूस पर यीशु 2022 व और अंतिम बलिदान थे। मई 1810 बेडेताल और जनवरी 1850 के बीच का इतिहास त्रुटि का प्रतिनिधित्व करता है और मसीह जो सत्य है दो अपराधियों के बीच रखे गए। यद्यपि वे अपराधी नहीं थे, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा था। हमारे पास तीन अपराधी हैं, एक जो नाश होगा और एक जो उद्धार पाएगा। ये तीन अपराधी अपराध द्वारा एक साथ बंधे तीन मार्ग चिन्ह हैं। यद्यपि मध्य का मार्ग चिन्ह अल्फा और ओमेगा अपराधियों के विपरीत है, अल्फा और ओमेगा अपराधी मध्य के मार्ग चिन्ह अर्थात क्रूस द्वारा जुड़े हुए हैं।
एक तोलीम्यू से 41 नाटुकोटा की तालिकाओं के साथ त्रुटि वो मध्य अक्षर थी जो पहले और अंतिम मार्ग चिन्ह को आपस में जोड़ती थी। क्रूस पर वाला मध्य मार्ग चिन्ह तीन अपराधियों को आपस में जोड़ता था, परंतु इनमें जो मध्य मार्ग चिन्ह है वो त्रुटि नहीं, वो सत्य है और सत्य का एक तत्व जिसे क्रूस और हबक्कूक की तालिकाएं दोनों समर्थन देती हैं, ये है कि 2022 अर्थात लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 का 7 गुना सत्य है और अभी प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में 2022 को अस्वीकार करना यीशु को अस्वीकार करना है।
जब पलमोनी अद्भुत कणाकर्ता कहते हैं 2300 दिन तक तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा, तो वे कितने समय के भविष्य सूचक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब उत्तर 1844 नहीं रहा, क्योंकि फिलाडेल्फियन मिलराइट आंदोलन 1856 में समाप्त हो गया, जब जेम्स और एलन वाइट ने ये पहचान लिया कि वो आंदोलन फिलाडेल्फिया से लाउदिकिया में स्थानांतरित हो चुका था। जब सिस्टर वाइट ने वो रेत में रेखा खींची तो उसका अर्थ ये था कि जब तक वो स्थिति न बदल जाए, परमेश्वर और उसके लोगों के संबंध को अलगाव का प्रतिनिधित्व करने वाला समझा जाना चाहिए, क्योंकि वो बाहर खड़े होकर लाउदिकियों के हृदयों के द्वार पर प्रवेश के लिए दस्तक दे रहे हैं। उनकी दिव्यता उनके मानवत्व में निवास नहीं करती। 22 अक्टूबर 1844 को मसीह ने जो कार्य प्रारंभ किया था वो अपनी दिव्यता को मानवत्व के साथ संयुक्त करना था, और मसीह यही करने को तैयार भी थे, पर ऐसा हो न सका।
यदि 1844 की महान निराशा के बाद एडवेंटिस्टों ने अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रखा होता और परमेश्वर के खुलते हुए प्रबंध में एकजुट होकर आगे बढ़े होते, तीसरे स्वर्गदूत का संदेश स्वीकार करके और पवित्र आत्मा की शक्ति में उसे संसार को प्रचार करते, तो वे परमेश्वर का उद्धार देख लेते। प्रभु उनके प्रयासों के साथ सामर्थ्य से कार्य करता, कार्य पूरा हो गया होता और अपने लोगों को उनका प्रतिफल देने के लिए मसीह अब तक आ चुका होता। परंतु उस निराशा के बाद आए संदेह और अनिश्चितता के काल में बहुत से एडवेंट विश्वासियों ने अपना विश्वास छोड़ दिया। इस प्रकार कार्य में बाधा पड़ी और संसार अंधकार में छोड़ दिया गया। यदि समूचा एडवेंटिस्ट समुदाय परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास पर एक हो जाता तो हमारा इतिहास कितना भिन्न होता। इवेंजेलिज्म 695।
प्राचीन इसराइल के इतिहास को दोहराते हुए प्रभु ने आधुनिक इसराइल को अंधकार युग के अंधकार से बाहर निकाला और लाल सागर पर उनसे वाचा में प्रवेश किया, क्योंकि बपतिस्मा वाचा संबंध का प्रतीक है। परंतु ये देखने के लिए इसराइल की परीक्षा ली जानी थी कि वे वाचा को निभाएंगे या नहीं। प्राचीन इसराइल के संदर्भ में गिनती की पुस्तक के अनुसार वे 10 परीक्षाओं में असफल हुए। 10वीं असफलता पर उन्हें 40 वर्षों तक मरुभूमि में भटकते हुए मरने का दंड दिया गया। इस प्रकार 1856 के लाओदीकिया संदेश को आधुनिक इसराइल द्वारा अस्वीकार करने का एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ। जिस प्रकार प्राचीन इसराइल 10 क्रमिक परीक्षाओं में असफल हुआ, 10 परीक्षा का प्रतीक है, उसी प्रकार 1844 में तीसरे स्वर्गदूत के आगमन से 1856 तक फिलाडेल्फिया मिलराइट आंदोलन पर एक क्रमिक परीक्षण प्रक्रिया लाई गई। लाल समुद्र से लेकर कादेश में पहली बगावत तक के 10 परीक्षणों को एक भविष्य सूचक अवधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि संख्या 10 इस पूरी अवधि को एक साथ बांटती है। 10 संख्या जब एक परीक्षण का प्रतीक है, तब 10 परीक्षणों ने उन 10 गोत्रों की पहचान कर दी जिन्होंने वाचा को अस्वीकार किया और 10वें परीक्षण तथा संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया में असफल रहे। ये अवधि लाल समुद्र पार करने से शुरू हुई और समुद्र के बाद 10 परीक्षणों में पहला सप्त था, जो 10 आज्ञाओं का प्रतीक और मुहर है, जिसका प्रतिनिधित्व मन्ना द्वारा किया गया। जब प्राचीन इसराइल में इन 10 परीक्षणों की अवधि को इतनी स्पष्टता से एक विशिष्ट भविष्य सूचक अवधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है और भविष्यवाणी की आत्मा हमें बताती है कि लाल समुद्र पार करना 22 अक्टूबर 1854 का प्रतिरूप था, तब हमें जान लेना चाहिए कि उसी बिंदु पर एक प्रगतिशील परीक्षण प्रक्रिया आरंभ हुई। एडवेंटवादी इसे नहीं जानते, इसलिए वे ये नहीं देख पाते कि 1863 में उन्हें रविवार के कानून तक लाओदीकियाई मरुस्थल में मरने के लिए ठहराया गया था। उसी कानून के बारे में चेतावनी सुनाने के लिए उन्हें उस परीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत में ही नियुक्त किया गया था, जो 1863 तक ले गई।
जब 1856 में मिलेराइट एडवेंटिज्म पर लाओदीकिया की दशा की उद्घोषणा आई, तो 7 बार के विषय में नया दाख मधु प्रकाशित किया गया। इस नए प्रकाश को कभी स्वीकार नहीं किया गया और 7 वर्ष बाद अर्थात 2520 भविष्यवाणी के दिन बाद लाओदीकियाई मिलेराइट आंदोलन समाप्त हो गया और लाओदीकियाई सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया बन गया। मूसा प्रतिज्ञा देश में जाने को तैयार था, परंतु 10वीं परीक्षा आ पहुंची और निश्चय ही वो एक मूलभूत परीक्षा थी, क्योंकि प्रारंभ से ही मूसा को जो कार्य सौंपा गया था वो परमेश्वर की प्रजा को प्रतिज्ञा देश में ले जाना था। वही कार्य तो मूसा के मिस्र पहुंचने से पहले से उसके सामने था। 10वीं परीक्षा आ पहुंची और विद्रोही प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने के विषय में द्विधा में पड़ गए।
और मैंने तुमसे कहा, तुम अमोरियों के पहाड़ पर आ पहुंचे हो, जिसे हमारा परमेश्वर यहोवा हमें दे रहा है। देखो, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उस देश को तुम्हारे सामने रख दिया है। ऊपर जाओ और उसे अधिकार में ले लो, जैसा तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहा है। मत डरना, ना ही हतोत्साहित कहा। तब तुम सब मेरे पास आए और कहा, हम अपने आगे पुरुष भेजेंगे जो हमारे लिए उस देश की छानबीन करें और फिर हमें ये समाचार लाएं कि किस मार्ग से हमें ऊपर चढ़ना चाहिए और किन नगरों में हमें पहुंचना होगा। ये बात मुझे अच्छी लगी और मैंने तुम में से 12 पुरुष लिए, प्रत्येक गोत्र से एक एक। व्यवस्था विवरण 1:20-33।
उस बिंदु से लेकर 12 जासूसों के लौटने तक का काल उस इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है जब 1856 में अंतिम आधारभूत परीक्षा आई थी और 7 वर्षों तक लाओदीकियन मिलराइट्स भूमि की टौ लेते रहे।
जब तक कि उन्होंने आंदोलन के रूप में रहना बंद करने और कलीसिया बनने का निर्णय नहीं ले लिया।
मिलर द्वारा खोजा गया पहला सत्य सात समय था, जिससे वो उन मूलभूत सत्यों की नींव बन गया जो यिर्मयाह के पुराने मार्गों का निर्माण करते हैं। एडवेंटिज्म में आया अंतिम नया भविष्य सूचक प्रकाश 1856 में था, और वो सात समय पर लेखों की एक श्रृंखला थी। इन ऐतिहासिक तथ्यों के गहन अध्ययन से बहुत सा प्रकाश प्राप्त होता है, परंतु यदि हमें यह निर्धारित करना है कि दानियेल 8 की 14वीं आयत का उत्तर 9:11 से लेकर रविवार के कानून से तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा क्यों है, तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। 844 में मसीह ने जो कार्य आरंभ किया था 2863 में उसे अलग दिशा में मोड़ दिया गया, इसलिए उस समय आरंभ हुआ पवित्र स्थान का शुद्धिकरण स्थगित कर दिया गया, जबकि परमेश्वर के लोग लाओदिया के मरुस्थल से होकर गुजरने लगे। इसी कारण 2844 से 2863 के काल में मसीहों द्वारा जो कार्य पूरा किया जाना था उसे अनिवार्यतः तब दोहराया जाना था जब तीसरा स्वर्गदूत, जो अलग करता है और मुहर लगाता है, अंततः शुद्धिकरण द्वारा दर्शाए गए कार्य को पूरा करता है। 2844 से 2863 के भविष्यवाणी के मार्ग चिन्ह वे मार्ग चिन्ह हैं जिनमें मसीही पवित्र स्थान के शुद्धिकरण का कार्य पूरा कर चुके होते, और वही मार्ग चिन्ह उस इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां ये कार्य पूरा किया जाएगा। यदि ये दिखाया जा सके कि 2844 से 2863 का काल नई तग्गार से लेकर रविवार के कानून तक के काल का प्रतिनिधित्व करता है, तो कब तक का प्रश्न उन अन्य रेखाओं के साथ सामंजस्य में है जो कब तक द्वारा दर्शाई गई हैं। 8:4:2 तीसरे स्वर्गदूत के आगमन का वर्ष था और 1863 परीक्षा काल के अंत को चिन्हित करता है। 1846 में वाइट दंपति का विवाह हुआ और एलन का उपनाम हारमेन से बदलकर वाइट हो गया, और उसी वर्ष उस विवाहित जोड़े ने सातवें दिन का सप्त मानना शुरू किया। भविष्यवाणी की दृष्टि से सप्त, विवाह और नाम का परिवर्तन सब वाचा संबंध के प्रतीक हैं। प्रभु ने आधुनिक इसराइल को 1844 के लाल समुद्र से होकर निकाल लिया और 1846 में उन्हें सीनै पर ले आया ताकि उन्हें व्यवस्था पदे और उनके साथ वाचा बांधे। वो व्यवस्था हबक्कूक की दो पट्टिकाओं की तरह दो पट्टिकाओं पर लिखी गई है। पहली पट्टिका में 4 आज्ञाएं हैं और दूसरी पट्टिका में 6। ये दो पट्टिकाएं प्राचीन और आधुनिक इसराइल दोनों के वाचा संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वाचा की ये दो पट्टिकाएं अर्थात 10 आज्ञाएं प्राचीन इसराइल के लिए प्रतीकात्मक रूप से 46 से चिन्हित हैं और हबक्कूक की दो पट्टिकाओं द्वारा चिन्हित हैं, जो अंतिम वर्षा के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है। पेंतेकॉस्ट की धराई जाने वाली भेंट की दो रोटियों के साथ मिलकर वे उस ध्वज का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि 144,000 है, जब सिस्टर व्हाइट का नाम हारमन से व्हाइट में बदल गया। हारमन का अर्थ शांति का सैनिक होता है, लेकिन उसे व्हाइट से बदल दिया गया, जो मसीह की धार्मिकता है। गूड नाम का अर्थ सोना है और एलेन का अर्थ एक उज्ज्वल और चमकदार प्रकाश है। उनका नाम लाओडिसियन संदेश का प्रतिनिधित्व करता है।
मैं तुझे ये परामर्श देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपा हुआ सोना खरीद ले ताकि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र भी खरीद ले ताकि तू पहन ले और तेरी नग्नता की लज्जा प्रकट ना हो, और अपनी आँखों में आँखों की मरहम लगा ताकि तू देख सके। प्रकाशित वाक्य 3:18।
आँखों का अंजन परमेश्वर के वचन का प्रकाश है और एलन एक उज्ज्वल और चमकता हुआ प्रकाश है। 1856 में मिलर राइट्स के लिए सुरक्षा लाओदिकिया के लिए दिए गए उस संदेश को स्वीकार करने में थी, जैसा कि उनकी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था और उनके नाम में भी परिलक्षित था। बहन व्हाइट स्पष्ट करती हैं कि 1888 में जोन्स और वैगनर का संदेश लाओदिकिया का संदेश था, और उनका संदेश तीसरे स्वर्गदूत का संदेश भी था।
प्रभु ने अपनी महान दया में एल्डर वैगनर और जोन्स के माध्यम से अपने लोगों के लिए एक अत्यंत बहुमूल्य संदेश भेजा। ये वही संदेश है जिसे परमेश्वर ने संसार को दिए जाने की आज्ञा दी। ये तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है जिसे उच्च स्वर से घोषित किया जाना है और जिसके साथ उसकी आत्मा का प्रचुर मात्रा में उंडेला जाना होगा। टेस्टिमनीज टू मिनिस्टर्स 91।
तीसरा स्वर्गदूत 1884 में आया और उसने 1888 में अपना कार्य दूसरी बार करने का प्रयास किया। 1888 का संदेश लाओदीकिया का संदेश था, वो तीसरे स्वर्गदूत का संदेश था। उसने प्रकाशित वाक्य 18 के स्वर्गदूत के उतरने को चिह्नित किया। ये विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का संदेश था, जो अंतिम वर्षा के उंडेले जाने के दौरान घोषित किया जाता है। तीसरा स्वर्गदूत 1884 में और फिर 1888 के आया, परंतु दोनों ही अवसरों पर उसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर भी दोनों ही अवसर इस बात का प्रतिरूप हैं कि तीसरा स्वर्गदूत अंतिम वर्षा के समय कब आता है। 1884 नवयुगावर का एक प्रतीक है, और यदि 1863 रविवार के कानून का प्रतिरूप है, तो कितनी देर के प्रतीक द्वारा दर्शाई गई नवयुगावर से रविवार के कानून तक की भविष्य सूचक अवधि पद 13 के कितनी देर वाले प्रश्न के वर्तमान सत्य उत्तर का प्रतिनिधित्व करेगी।
1842 से 1850 तक का मिलेराइट इतिहास एक भविष्य सूचक काल है, जो 1844 से 1863 तक तीसरे स्वर्गदूत की परीक्षा के भविष्य सूचक काल के साथ अतिव्याप्त है। 1842 से 1863 तक में ऐसे भविष्य सूचक मार्ग चिन्ह हैं जो 9/11 से लेकर रविवार के कानून तक के इतिहास को दर्शाते हैं, जब मसीह अपने मंदिर को शुद्ध करते हैं, पहले अपनी कलीसिया को और उसके बाद 11वें घंटे के मजदूरों को। रविवार के कानून के समय मसीह के पास एक शुद्ध प्रजा होगी, जिसे वे संसार के सामने एक ध्वज स्वरूप भेंट के रूप में प्रस्तुत करेंगे और कलीसिया विजयी कलीसिया बन जाएगी। तब उसका पवित्र स्थान शुद्ध कर दिया गया होगा।
हमने कब तक के प्रतीक को अपनी जगह स्थापित कर दिया है? हालांकि निस्संदेह और भी कुछ है। हम इस लेख और पिछले 5 लेखों को योएल की पुस्तक के नाम परिप्रेक्ष्य में फिर से लाना शुरू करेंगे, लेकिन इन विषयांतरों को शामिल करना महत्वपूर्ण लगा। हमने जिन जिन कब तक की गवाहियों पर विचार किया है, वे उस कब तक के प्रश्न से मेल खाती हैं, जिसका उत्तर पालमूनी ने पद 14 में दिया, क्योंकि पवित्र स्थान का शुद्धिकरण नौ केबल से लेकर संडे लॉ तक होना है। वो इतिहास अंतिम वर्षा का इतिहास है, और अंतिम वर्षा का इतिहास योएल की पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है।